तो वो तो मुशरिक नहीं थे, वो कैसे थे फिर? शाकिर अल्ली अन उमी, शुक्र करने वाले उसकी नेमतों। क्या था उनके पास, क्या था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बताएं? बादशाह थे क्या, हुक्मरान थे क्या, महलों में रहते थे क्या, आगे पीछे उनके नौकर थे क्या, बहुत बड़ी हुकूमत थी क्या उनकी? नहीं, क्या थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम? होमलेस थे। वतन उससे तो निकाल ही दिया गया, घर बार कोई भी नहीं, कौम बरादरी जत्था नहीं, वो भी नहीं नजर आ रहा, मालो दौलत वो भी नहीं है, एक अरसे तक औलाद की नेमत वो भी नहीं नजर आई। क्या था जिसपे शुक्र अदा कर रहे थे? हम कहते हैं, आज रोते हैं, मेरे पास कौन सी कोई ऐसी चीज है, मैं किस पे शुक्र अदा करूं, मुझे क्या मिला है, ये कहते हैं ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास क्या था जिसपे शुक्र अदा करें? इससे पता चला कि शुक्र जो होता है ना, वो इस पे नहीं होता कि जब इंसान के पास बादशाहती होगी तो शुक्र करेगा, जब उसके पास कोई इतने लग्जरीज के अंबार होंगे तो वो शुक्र करेगा, ऐसा नहीं है। शुक्र गुजारी असल में वो एहसास है, वो दिल के अंदर होता है, दिल के एहसास का नाम है। और वो उस पे नहीं होता कि जब बहुत कुछ मिला है तो तब, वो जो शुक्र गुजार इंसान है वो हर वक्त उस चीज को देखता है जो उसके पास है, उसको नहीं देखता जो उसके पास नहीं है। और ना शुक्रा इंसान हर वक्त उस पे रोता है जो उसके पास नहीं है, उसको वो नजर ही नहीं आता जो उसके पास है, कि मेरे पास कितना कुछ है वो नहीं नजर आता, मेरे पास क्या वो एक चीज नहीं है, उसके ऊपर हर वक्त रोना, हर वक्त रोना, ये ना शुक्री है, ये ना शुक्री है। या अल्लाह हमें ना शुक्री से महफूज रख, हमारी कहीं एक तरफ से कोई कमी हो जाए, एक तरफ से हमारे रस्सी खिंच जाए, एक हमारे से कोई नेमत छिन जाए, या एक चीज हमें नहीं मिली भी, हम हर वक्त उसको ही रोते रहते। जिसके पास औलाद नहीं उसका यही काम खत्म नहीं होता, बस हर बात उसको ये ना नजर आ रहा कि मुझे सेहत की नेमत है, अमन अमान है, मेरे घर में खाना पीना है, मेरे प्यारे हैं, मेरे पास और नेमते, उसको बस ये नहीं, हमारे पास औलाद नहीं, हाय औलाद नहीं, हाय, उसके ऊपर ही वो सोग बनाता रहता। किसी का एक कोई फौत हो जाता है तो वो उसी के ऊपर सारी जिंदगी डिप्रेशन के अंदर रहता है, उसको ये नहीं नजर आता कि मुझे अल्लाह ने और कितनी नियमते दी। किसी की जॉब चली जाए वो उसी के ऊपर रोता रहेगा, उसको कोई नहीं नजर आएगा मेरे पास और क्या कर। तो इंसान की ये नाशुक्री है कि वो उन चीजों का हर वक्त दिल में एहसास रखे जो उसको एक आध चीज या दो चार चीजें नहीं मिली। और वो कितनी नियमते मिली हुई हमें, क्या हमने पढ़ा था इसी सूरत में, पढ़ा सूरह इब्राहिम में भी पढ़ा था, क्या क्या मिला हुआ हमें, कितनी मिली हुई है नेमतें बताइए। इन तअद्दू निअमत अल्लाही ला तुहसुहा, इतनी नेमतें तुम्हें अल्लाह ने दी हैं कि तुम गिन भी नहीं सकते। इसको वाकई दिल से मानते कि गिन भी नहीं सकते हम? नहीं मानते, अगर मानते होते तो हमारा शुक्रगुजारी का रवैया होता, हमें तो लगता है हमें कुछ मिला ही नहीं, इसीलिए हमारी हाय हाय खत्म नहीं होती, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हाय हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हाय मुझे क्या मिला है, आगे से बल्कि उल्टा हम पूछते हैं, हाय मुझे क्या मिला है। अल्लाह अकबर, रब फरमाता है तुम गिनने लगो, तुम्हारे आज सुपर कंप्यूटर भी है ना, वो भी नहीं गिन सकते जितनी नियमते मैंने तुम्हें दी है। कंप्यूटर के कंप्यूटर भर लो, कंप्यूटरों में लिखने शुरू कर दो, काउंटिंग लगा दो, गिन ही नहीं सकते, ये रब का दावा है। इतनी नेमते हैं हमारे पास लेकिन क्यों नहीं नजर आती, क्योंकि हम ना शुक्रे बहुत है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बजाहिर देखने में कुछ भी नहीं था उनके पास, जिसको जो आज हम नेमत समझते हैं ना, उनमें से कुछ भी नहीं था, फिर भी इतना अल्लाह ने उनको आजमाया, इतना आजमाया, हर तरफ से आजमाया, बीवी से, औलाद से, उनकी अपनी जान से, हालात से, कौम से, हर तरफ से आजमाया, लेकिन लेकिन हर जगह वो शुक्र गुजार ही रहे। अल्लाह अकबर, इज्तबाह हो, उसने चुन लिया उसको। अल्लाह ऐसे ही नहीं चुन लेता, फिर अल्लाह ताला ने चुन लिया इसलिए कि शुक्र गुजार थे, वो शुक्र की मिसाल थे, तो अल्लाह ने उनको चुन लिया। वहदाहु इला सिरात मुस्तकीम, फिर अल्लाह ने हिदायत दे दी सीधे रास्ते की। हम तो मांगते हैं हिदायत, अल्लाह ने उनको हिदायत दे दी, अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया, अल्लाह ने उनको चला दिया फिर सिराते मुस्तकीम पे, क्योंकि इंसान की अपनी तौफीक नहीं है कि वो सिराते मुस्तकीम पे चल सके। अल्लाह तब ने चला दिया उनको, उंगली पकड़ के चला दिया, फिर अल्लाह थाम लेता है, फिर अल्लाह चला देता है जब इंसान शाकिर होता है। शाकिर ये नाम तो रख लिया जाता है, शाकिर शाकिरा, लेकिन कितने शुक्र गुजार हैं हम। बहसियत कौम भी ना शुक्रिया, और बहसियत अफराद भी हम ना शुक्रिया। देखिए अगर आप अपने जुबान की बातों को, वाकई ऐसा ही है। वआतैनाहु फिद्दुनिया हसना, हमने इसको इस दुनिया में भी हसना दी, इस दुनिया में भी हमने उसको भलाई दी। और दुनिया की भलाई क्या थी, अल्लाह ताला ने उनको नबुवत अता फरमाई, अल्लाह ताला ने उनको फिर औलाद भी दे दी, फिर उनको पोते की नेमत को भी बता दिया, उनकी औलाद को भी अल्लाह ने नबी बनाया, इस्माइल अलैहि सलाम और इसहाक अलैहि सलाम नबी हुए, उनकी आगे औलाद के अंदर आखिरी नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने उनको अपना खलील बना दिया, अल्लाह ताला ने उनका जिक्र कुरान में रख दिया, रहती दुनिया तक उनका जिक्र और उनकी तारीफें चलती रहेंगी। हर मजहब वाले उनका इकराम करते, उनकी इज्जत करते हैं, चाहे वो कोई भी है, ईसाई है, यहूदी है, मुशरिक है, सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जानते हैं, मानते हैं, उनकी अच्छी तारीफ करते हैं। उनका नाम देखे दुरूद शरीफ के अंदर भी हम उनका नाम लेते हैं, कमा सल्लै ताला इब्राहिम वाला अली इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद, कमा बारक ताला इब्राहिम वाला अली इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। तो देखें इब्राहिम अलैहि सलाम का अच्छा जिक्र अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक रख दिया। तो हालांकि उनके साथ कोई बहुत लंबी चौड़ी फॉलोइंग नहीं थी, देखिए लंबी चौड़ी हम बहुत फॉलोइंग को देखते हैं ना कि कितने इसके पीछे चलने वाले हैं, इसके स्टूडेंट कितने हैं, इसके फॉलोअर कितने हैं, इसके फैन कितने हैं, कोई उनके फैन नहीं थे। लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे उनका नाम जिंदा रखा, काबा की तामीर उनके हाथों से कराई, सुभान अल्लाह, उनकी फैमिली से जमजम का कुआं, जमजम आज भी चल रहा है, आज भी लोग पानी पी रहे हैं वहां से, आज भी लोग उस काबा का तवाफ कर रहे हैं जिसकी बुनियादों पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोशिश और काविश और मेहनत थी। उनकी औलाद के अंदर फिर सारे नबी आए, जितने नबी उनके बाद आए वो सारे उनकी औलाद में से ही आए, उनकी औलाद से बाहर नहीं आए, कितना बड़ा इकराम। तो अल्लाह ताला जो है ना कदरदान है, इससे पता चलता है। हम इतने थोड़े दिल है ना, हमें लगता है कि आज हम नेकी करेंगे ना कोई, बस फौरी तौर पर या तो मिल जाए, अच्छा आखरत में इसका सवाब मिलेगा, चलो जी आखरत किसने देखी है, हमें तो आज चाहिए, हम उस लालच में कहते हैं इसको छोड़ो हम कुछ और काम कर लेते हैं। अल्लाह ताला देखिए यहाँ से पता चलता है कि इतना कदरदान है ना, आप अल्लाह के रास्ते में लग के तो देखिए, वो दुनिया की भी भलाई देगा। और पहले दुनिया की मेंशन की गई है, इधर बना आती ना फिर दुनिया हसना, हम जब मांगते भी हैं, अल्लाह ताला ने कुरान में ये दुआ सिखाई है हमें कि पहले दुनिया की हसना मांगो, दुनिया की भलाई मांगो, दुनिया की भलाई में नेकी की तौफीक भी आ जाती है, चैन सुकून अमन सब कुछ आ जाता है दुनिया की हसना में। तो दुनिया की हसना अल्लाह ने उनको अता फरमाई, ऐसे नहीं कहा कि बस आखरत में, आखरत में तो पता ही है, आखरत में तो जो उनके मकामात होंगे कौन इससे ना वाकिफ है, हर एक को पता है कि आखरत में उनके कितने बड़े मकाम, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह ने दिया ना। तो फिर क्यों हम ये सोचते रहते हैं और क्यों हम इतने बेसब्रे हो जाते हैं कि क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिला, उनको भी एक इंतजार के बाद मिला था, पर मायूस नहीं हुए, कहीं मायूसी नहीं नजर आती कि अल्लाह आज तक तो औलाद मिली नहीं है तो मुझे तो मिलनी ही नहीं है। तो दुनिया की भी हसना और आखरत में वो भी ना सालेहीन सालेहीन के साथ होंगे। सालेहीन कौन? अंबिया, शुहादा, सिद्दीकीन के ग्रोह, सालेहीन के ग्रोह के साथ होंगे। और हर नबी ने इस चीज की ख्वाहिश की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने लिए मांगा वाले हकनी बिस सालेहीन, अल्लाह मुझे सालेहीन का साथ अता फरमाना। ये साथ दुनिया में भी मांगना चाहिए और आखरत में भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मांगा, हुस्नून दुआओं में देख ले। तो ये जो साथ है ना, अगर दुनिया में मिल जाए तो दुनिया भी इंसान के लिए जन्नत बन सकती है कि सालेहीन का साथ यहाँ पे अता हो जाए। क्योंकि देखिए दुनिया में कई फ्रॉड किस्म के लोग होते हैं, कई दुनिया में फंसे हुए अल्लाह से दूर लोग होते हैं। अगर वैसी कंपनी मिल जाएगी तो इंसान वैसा ही हो जाता है। सालेहीन का साथ होगा तो वो आपको बार बार अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह की तरफ लेकर आएंगे, आपको याद दहानियां कराएंगे, आपको आपके मुश्किल वक्त में सब्र की तलकीन करेंगे, हक बात कहेंगे। सालेहीन का साथ बड़ा ही प्यारा होता है। सालेहीन के साथ इतना प्यारा है कि देखिए वो इंसान को उनका साथ मिल जाए तो इंसान दुनिया से चला भी जाए तो सालेहीन होंगे उसके साथी, तो उसके लिए दुआएं करेंगे। ठीक है, तो ये कितना प्यारा साथ है। तो साले लोगों के साथ की दुआ का मांगनी चाहिए कि अल्लाह मुझे अपने पसंदीदा जो बंदे हैं ना, जो तेरे नेक बंदे हैं, उनका साथ अता फरमा। और ये ऐसे लोग हैं जिनका आखरत में भी साथ मिल जाना, यानी जन्नत के अंदर होंगे। सालेहीन तो जन्नत में ही होंगे, उनका उनके साथ वहां पे भी शामिल करना, दुनिया में भी लेना। ठीक है, तो अल्लाह ताला नवाजता है। यहाँ से पता चला इब्राहिम अलैह सलाम की को जो चीज़ें अता हुई उनसे पता चला कि कभी भी इंसान इस बात से नाउम्मीद ना हो कि मुझे कुछ नहीं मिलना, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ना, मुझे कुछ नहीं होना, नेकी कर तो क्या फायदा हुआ इसका। नहीं, अल्लाह दुनिया में भी फायदा देता है, दुनिया में भी समरात दिखाता है उसकी, वो जाया नहीं जाती अगर आपने अल्लाह के लिए की है, और आखरत में भी अल्लाह ताला उसका अजर अता फरमाता है। ठीक है, क्योंकि शैतान जब ये कहता है ना, क्या फायदा हुआ तुझे, तुझे क्या मिला ऐसी नेकी करके, क्या फायदा, तुम छोड़ो नेकी उनको, तो छोड़ो अब तो हम बाज आए ऐसा करने से, तो ये शैतान दिल में डालता है। तो हमें बस ये कुरान ही हमें याद दहानियां कराता है ना कि कोई नहीं, जो नेकी करोगे अल्लाह ताला दुनिया में भी देगा उसका अजर। और नहीं तो इंसान की औलाद की रास्ते में, औलाद की सूरत में उसको मिल जाता है। देखा नहीं आपने सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वो जो माँ बाप साले थे, नेक थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी औलाद के साथ भलाई फरमाई है, उनकी औलाद के साथ भलाई फरमाई ना। तो वालिद का नेक होना, या आपको वालदा नेक होना, वहां पर तो वालिद का जिक्र है, लेकिन अगर आप वालदेन नेक है ना, तो आगे औलाद में भी अल्लाह नेकी की वो कोई सूरतें दिखाएगा। सुम्मा ओहैना इलैका अनित्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा, फिर वही की हमने आपकी तरफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की पैरवी करें, किस रास्ते की, मिल्लत इब्राहीम हनीफा, इब्राहिम अलैहि सलाम के तरीके की। इब्राहिम वो जो यकसू थे, सब शिर्क के उन सब चीजों को छोड़ के वो तौहीद पे जमे हुए थे, उनकी पैरवी करनी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रास्ता, और कैसा रास्ता था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो थे कि जब उनकी कौम ने उनको रिजेक्ट किया तो उन्होंने उनके साथ कोई बेसब्री नहीं की, उन्होंने उनको बुरा भला नहीं कहा, उन्होंने उनके साथ दलील से बात की। इवन नमरूद के साथ जो मुबाहसा किया, मुजादला किया, सूरह बकरा में आता है, दलाइल के साथ किया, जबरदस्त किया, तहम्मुल के साथ किया, बड़ा सबर के साथ किया, और अपनी कौम की भी तबलीग करते ही रहे, एंड तक करते रहे, अपने बाप को तबलीग करते रहे एंड तक, हालांकि बाप का रवैया क्या था, अपने प्यारों को भी की, बाहर वालों को भी की। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नमूना है। तो बताया गया कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये वही की कि वो पैरवी करें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की, जो हनीफ थे। हनीफ ये लफ्ज जब आ गया ना, तो हमें सबको ये समझ आना चाहिए कि इस रास्ते के ऊपर यकसू होके चलना है, फोकस्ड फोकस्ड, ये नहीं कभी इधर जा रहे हैं तो कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं फिर उधर चले गए फिर इधर आ गए फिर उधर, नहीं फोकस्ड होके करें ना, फोकस्ड होके चले। मैं कहा ना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिक नहीं थे। देखिए बार बार एक ही बात है कि वो शिर्क का जरा जरा बराबर नामो निशान उनके अंदर नहीं था, तौहीद पे जमे हुए थे, उनके अखलाक की, उनकी तौहीद की, उनके अकीदे की, और उनके किरदार की, और उनकी इताअत में, इस सब के अंदर हमारे लिए एग्जाम्पल है। इसलिए हमारे लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी वही की गई कि उनके रास्ते को आप फॉलो करें। इन्नमा जुअला सबतु अला अल्लज़ीन अख्तलफू फी, बेशक हमने बना दिया, फर्ज कर दिया हफ्ते का दिन उन लोगों पर जिन्होंने खिलाफ वर्जी की थी इसकी। तो आपको पता है कि यहूदियों के लिए सब्त का दिन बनाया गया था, तो अल्लाह ताला ने फिर उन्होंने इख्तलाफ किया, कैसे इख्तलाफ किया, उनको भी पहले जुमे का दिन इबादत के लिए दिया था। हर देखिए उम्मत को कोई ना कोई दिन दिया गया कि आपने उस दिन इबादत करनी है, इबादत के लिए मुकर्रर किया गया। तो ऐसा नहीं था कि उनको हफ्ते का दिन दिया गया, उनको भी जुमे का दिन दिया गया था इबादत के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था, मगर इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो 6 दिन के बाद जो 7वां दिन है ना उसमें इबादत करेंगे, और वो तो सब्त का दिन बनता है, तो हमने तो उस दिन करनी है। तो इन्होंने खुद अपने लिए सब्त का दिन चूज किया था, फिर ईसाइयों ने अपने लिए संडे का दिन चूज कर लिया, तो इनको भी जुमे का दिन, असल में तो जुमे का दिन दिया गया। तो यहाँ पे बताया गया कि जो इला सब्त से मुराद है कि सब्त की सजा को इनको भुगतना पड़ा, ये फिर उन्होंने उसकी भी पाबंदी नहीं की, खुद ही ये दिन मुकरर किया, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया था कि इस दिन सिर्फ इबादत करनी, इन्होंने मछलियां पकड़ने शुरू कर दी, इनको मना किया था, इन्होंने बात नहीं मानी, तो इन्होंने खुद इख्तलाफ किया इस दिन में। और फिर वह इन्ना रब्बा का लयाहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फीमा कानू फीही यख्तलिफून, इन्होंने जो इख्तलाफ किया, और हर किस्म का इख्तलाफ है, आपका रब फैसले करेगा कयामत के दिन उन सब चीजों में जिसमें लोग इख्तलाफ करते हैं, चाहे वो ये जो मैं हफ्ते का दिन जिसने ले लिया, या और अपने दीन के बारे में, इसके अहकामात के बारे में जितने इख्तलाफात हैं। देखिए दुनिया में सब इख्तलाफात का फैसला नहीं हो सकता, सब नहीं सुलझ सकते, कोई कह रहा है ये सही है, कोई कह रहा है ये सही है, हर उम्मत हर ग्रोह अपने अपना जो उसके पास है ना उसी को सही समझता है, वो कहता है बस इस ये ही सही है और यही बात हक है और यही बात सही निकलेगी कयामत के दिन। लेकिन अल्लाह ताला ही है जो फैसला करेगा उस दिन जिसमें भी लोग इख्तलाफ करते हैं। आज कितनी बहसें होती हैं, आप खुद से बताएं, इतनी बहसें होती हैं बहुत तरह के मामलात में, सिर्फ दीन अदियान में नहीं, बहुत तरह के मामलात में कोई किसी ने कोई चीज हक बनाई भी है, कोई दूसरा जस्टिफिकेशन देके किसी और चीज को हक कह रहा है, किसी के पास कोई दलील है, किसी के पास कोई दलील है, इन सब चीजों का फैसला कैसा होगा? दीन का भी और बाकी भी जितने इख्तलाफात हैं उन सब का फैसला, आज देखें कितने फिरके फिरके बन गए, फिरकों में इख्तलाफ है, हर कोई दूसरे को काफिर कहे भी, तो काफिर है कौन फिर? देखिए यहाँ पे हम अपने तौर पे तो कह सकते हैं, लेकिन उनको कौन मनवा सकता है, वो अपने दलाइल लेकर आ जाते हैं, तो उसके अंदर क्या है फिर कि कयामत के दिन अल्लाह ताला इन सारे झगड़ों का फैसला फरमाएगा जिसमें लोग इख्तलाफ करते थे। उदउ इला सबीली रब्बी का बिल हिकमती वल मौइज़ती, अब वो बात कही गई कि अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाइए, कैसे, अब उसको बताया गया कि इख्तलाफात में नहीं पड़ना, इख्तलाफात के पीछे नहीं जाना, उसके ऊपर बैठ के और फिर बस इसी को एक पॉइंट बना के और फिर दुश्मनियां, और फिर बाज दफा होता ऐसे है कि इंसान अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाना तो चाहता है लेकिन उसको समझ नहीं होती और वो उल्टा नुकसान कर देता है। तो यहाँ पे हमें समझाया गया कि किस तरह से आपने अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाना है, क्या तरीका होना चाहिए, क्या आप टूल्स या क्या सिफात है जो आपके अंदर होनी चाहिए, दावत के असूल बता दिए गए। उदाऊ मतलब दावत दो मतलब बुलाओ, किस तरफ, इला सबीली रब्बी का, अपने रब के रास्ते की तरफ। वैसे तो हर काम के अंदर ही बड़े इंसान को हिकमत के साथ चलना चाहिए, लेकिन खास तौर पे जब आप दावत का काम कर रहे हैं तो एक तो अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाना, लेकिन हर कोई इंसान किसी रास्ते की तरफ बुला रहा होता है, ठीक है ना। कोई अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाता है, कोई गैर अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाता है लोगों को। हम उम्मत मुस्लिमा का फरीजा क्या है, अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाना, ठीक है। और इसके लिए पहले खुद उस रास्ते पे कायम रहना जरूरी है। खुद पहले आप सीधे रास्ते पे होंगे तो दूसरों को भी उस रास्ते की तरफ बुलाएंगे। अब देखिए आजकल जो हो रहा है ना, कि कोई किसी रास्ते की तरफ बुला रहा है, कोई किसी रास्ते की तरफ बुला रहा है, क्या है ये, डिफरेंट तरीकों की तरफ लोगों को बुला रहे हैं। या तो कोई इंसान अल्लाह की तरफ बुलाने वाला होता है, या किसी और रास्ते की तरफ बुलाने वाला होता है। उम्मती होने में हमारे ऊपर ये फरीजा है कि हम अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाने को अपना अपने ऊपर समझें कि हमारे लिए हमारा ये काम है, ये भी हमारी एक जॉब है। हम अल्लाह के रास्ते के पे बुलाने के लिए चुने गए हैं, इस उम्मत को चुना गया है कि वो दावत दे, लोगों को बुलाए। अल्लाह ताला ने फरमाया उसके लिए आप क्या करो, हिकमत के साथ बुलाओ। हिकमत के साथ अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ हिकमत क्या होती है, एक तो हिकमत है कोई कुरान सुन्नत, ये हिकमत है, कुरान और हदीस हिकमत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुरान के जरिए लोगों को बुलाया अल्लाह के रास्ते की तरफ। तो बजाय बहुत लंबे चौड़े लेक्चर वैसे देने के, कोई कुरान की बात बताएं, हदीस की बात बताएं, तो ये हिकमत है। दूसरे हिकमत क्या होती है, सही टाइम पे सही फैसला करना, ये भी हिकमत होती है। कि यानी आप सही टाइमिंग देख के बात करें, ऐसे नहीं कि वक्त बेवक्त। अभी दूसरा इसके लिए तैयार नहीं है, वो मिसन उसको भूख लगे, वो खाना खाने लगा, आपने साथ अपना लेक्चर शुरू किया, बस ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। भाई आप वक्त देखिए, कौन सा मुनासिब वक्त है, किस तरह से मुनासिब बात की जाए, किस तरह से ऐसी बात की जाए कि जो बड़ी हिकमत वाली हो, विजडम के साथ, समझ के साथ। बस लोग समझदारी का मुजाहिदा नहीं करते, उनको शौक होता है कि वो बड़ा दावा का काम करें, घर में ही सारी समझदारी खत्म हो जाती वहां पे, बजाय किसी दलील के साथ और मौका देख के दूसरे के समझ का लेवल भी देखना है। हिकमत में ये भी आता है, समझ के मुताबिक। अब बच्चे से बात कर रहे हो, उसको कहाँ कहाँ से बातें बता रहे हो, उसको क्या समझ है उसकी। या एक ऐसा इंसान है कुरान ही नहीं कभी पढ़ा हुआ, जिसको कोई पता ही नहीं है, उसको इतनी ऊंची ऊंची बातें बताना शुरू कर दे, उसके लेवल की बात बताए। फिर ना इसके अंदर जज्बात में आने की जरूरत है, ना गुस्से में आने की जरूरत है, ना इसमें ताने देने की जरूरत है। हिकमत 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 ही तो नहीं आती हमें, अल्लाह ताला से हिकमत मांगनी चाहिए। युतिल हिकमत मैय शाह, वो जिसको चाहे हिकमत अता फरमा। मैं युतिल हिकमत फकत ऊतिया खैरन कसीरा, जिसको हिकमत मिल गई उसको बहुत बड़ी खैर मिल गई। तो हिकमत अल्लाह से मांगे, अल्लाह मुझे हिकमत दे अपने काम के लिए, हिकमत दे। ये बड़ी अल्लाह ताला की नवाजिश होती है। इल्म तो हम ले लेते, हिकमत नहीं आती। इल्म तो आप पढ़ लिया, आपको पता चल गया, हिकमत कैसे आए कि समझदारी। तो ये जो हिकमत है ना, इसके साथ हमने काम करना है। आज बहुत सारी जगहों पर जब हम हिकमत का मुजाहिरा नहीं करते तो उल्टा दूसरे लोग चिढ़ जाते हैं, उल्टा वो हमसे भागने लगते हैं, उल्टा वो कहते हैं मैंने हमें ना सुनाओ, हम उनसे कुछ ऐसी बातें कहलवा लेते हैं कि उल्टा गुनाहगार कर देते हैं उनको, क्योंकि तो हमने हिकमत नहीं इस्तेमाल की ना। वल मौइज़ातिल हसना, और मौइज़ा हसना वाज, ऐसा जो वाज कहते हैं नरम बात को, उम्दा वाज, उम्दा नसीहत, नरम बात करें। देखिए बात करने में ऐसे उछल उछल के बातें ना करें, ऐसी ऐसी बातें ना करें कि जो है ना दूसरे के ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये जी हमारी दावत का हो रही, ये मुझे गुस्सा आ गया। भाई गुस्से से नहीं ये काम होते, ये तो नरम बात, नरम नसीहत के साथ होते हैं। अब ऐसी उसको बात की कि उसकी अनाई जगा दी, उसको ऐसे ताने दिए, तो उसकी बजाय इसके कि वो सीधे रास्ते पर आता, उसकी अना जाग गई, वो और ज्यादा वो हो गया कि मैं तो अब इस रास्ते पे आना ही नहीं। तो ये उम्दा बात जो खैर ख्वाही के साथ की जाए, दर्दमंदी के साथ की जाए। क्यों आजकल लोग जो है ना दीन वालों से भागते हैं, क्यों अपना रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ना हिकमत है ना मौजतुल हसना है। ना नरम बात करनी है, बात भी ऐसे करनी है जैसे मैं कोई ऑर्डर दे रही हूं। ऑर्डर देने से थोड़ी होता है। किसी ने कहा कि बड़ी बड़ी अच्छी बात किसी ने लिखी थी कहीं, उन्होंने कहा अगर आपने किसी को क्या चीज समझानी है कि ये करो, तो मसलन उन्होंने कहा कि आपने बताना है कि दांत साफ करो अपने, टूथब्रश करो, मुंह हाथ धो, तो वो उन्होंने कहा आप ऐसे ना कहें टूथब्रश करो, आप कहें अगर आप टूथब्रश कर लें तो आपके दांत कितने खूबसूरत लगें, कितने प्यारे चमके, अगर आप मुंह हाथ धो लें तो आपका चेहरा कितना रोशन नजर आएगा। मैंने कहा तो देखो कितनी हिकमत की बात इसने लिखी। इसी तरह बाकी चीजों में भी उन्होंने लिखा हुआ था, अल्लाह ताला हमें हिकमतें अता फरमाए, लेकिन उन्होंने इसी तरह लिखा हुआ था कि आप इस तरह से करके बात करें कि अगर आप ये कर लें तो कितना अच्छा हो, कितने प्यारे लगे आप। और वाकई आप अगर देखें ना तो इतनी हिकमत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तबलीग के अंदर, इतनी हिकमत है कि उनसे भी आप सीखते हैं। और देखिए कैसे कैसे लोगों ने तो नूह अलैहि सलाम को कैसी कैसी बातें की, कैसे कैसे उनको आपने सूरह आराफ में पढ़ ही लिया है कि कैसे नूह अलैहि सलाम को कहते थे कि आप तो वो हैं दलाल मुबीन पे हैं, आप तो कुली गुमराही पे हैं, किसी नबी को कह रहे हैं कि आप तो सफी सफाहतन में हैं, इन्ना लना कफी सफाहतिन व इन्ना लना दुनु का मिनल कादिबीन, आप तो झूठे हैं, आप तो बेवकूफी में मुबतला है, कौमे आद ने कहा था ना हुद अलैहि सलाम को। अब उसके ऊपर तो गुस्सा आ जाना चाहिए कि तुम मुझे झूठे कह रहे हो, तुम्हें क्या मजाल है, तुम कौन से सच्चे हो। अब हम तो ऐसा जवाब दे, अब शुएब अलैहि सलाम को कह रहे हैं तुम्हारी नमाजें तुम्हें यही सिखाती हैं कि तुम अपने बाप दादा के दीन को ही छोड़ दो, ये सिखाया तुम्हारी नमाज ने तुम्हें। आज भी कई लोग ऐसे कह देते हैं तुम्हारा दीन बड़ा तुम्हें यही सिखाता है, तुम इस तरह से बात कर रही। अब उसके ऊपर और इंसान गुस्से में आ जाता है, और इंसान को होता है तैश आता है कि मुझे ये कह दिया, खुद तो नहीं आगे से ये कहते थे कि ये मुझे ताने मार रहे हैं मेरी नमाजों का, मुझे मेरे मिसाल के तौर पे मेरे कुरान पढ़ने में ताने मार रहे हैं, मैंने नहीं आज से पढ़ना कुरान, हम तो यही करने लगते हैं। अब तुम ना दखल दो हमारे मामला में, हमें खुद पता है कि हमने अपनी तिजारत कैसी करनी है, ये शुएब अलैहिस्सलाम को कहते थे। तो वो कैसे उनके तहमुल वाले जवाब हैं, कैसे उनके हिकमत वाले जवाब हैं। फिरौन ने कितनी बदतमीजी की मूसा अलैहिस्सलाम के सामने, तुम तो हमारे टुकड़ों पे पले हो, एक तरह से ये फ्रेज है कि ये जो उसने कहा कि हमारा एहसान तुम मानो, एक तरह से ये बात उसने कही थी। अब उसके ऊपर कितनी इस चीज की बात है कि इंसान गुस्से में आ जाए उस वक्त, तो और फिर ये ताना दे दिया तुमने तो हमारे आदमी को कत्ल कर दिया। अब वो नहीं कह रहे हैं तुम तो इस काबिल ही हो, तुम लोगों को तो ये होना चाहिए था, वो कौन सा सही था। उन्होंने कहा मैंने ये काम उस वक्त किया था जब मुझे नहीं पता था, मैं नावाकिफ था उस वक्त। देखिए ना मतलब उनके जवाबात भी कैसे थे। और उन्होंने जब उसने एहसान जिताया तो मूसा अलैहि सलाम कह रहे हैं ये तो वो नेमत है जिसका तू मुझ पे एहसान रखता है कि तूने बनी इसराइल को सख्त जिल्लत में डाल रखा था, तुम मुझ पे ये एहसान कर रहे हो जबकि वो तो देखो। फिर और भी तरह से फिरौन ने किस किस तरह से बातें सुनाई, इस तरह और भी अंबिया की हैं, नबी अलैहिस्सलाम के साथ खुद कितना लोग करते थे, अबू जहल कैसी बातें करता था, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कभी कोई बद्दू कुछ कर रहा है, कभी गले के अंदर चादर डाल के खींच रहा है, कभी कोई किसी तरह से कर रहा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना तहम्मुल था। फिर देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना एहतियात करते थे कि अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते के बाज अय्याम में ही सिर्फ वाज फरमाते थे, किस लिए कि अगर हर वक्त जहां बैठेंगे उनको लेक्चर शुरू कर देंगे, तो फरमाते हैं कि इसलिए कि हम उकता ना जाएं। और दूसरों को भी आप यही हिदायत करते थे कि हर वक्त ना लोगों के पीछे पड़ा रहा करके, जिधर देखा उसको लेक्चर शुरू कर दी, अब जिधर आप जाए उधर लेक्चर शुरू कर दीजिए, आप बन के आप लोगों तो आपको बुलाना ही बंद कर देंगे, कहेंगे कि आप मुसीबत इनके पास हो बैठो तो ये अपने लेक्चर शुरू कर देती है। ठीक है जितना भी आपके पास इल्म हो, इसलिए कोई आपको कहे कि आप कोई बात कहें, आप कोई बात बताएं, तो आप बता दें, या बातों बातों में कोई बात आप कर दें, लेकिन हर वक्त ऐसे ना बैठ जाएंगे, क्लास लगा के हर जगह बैठी हुई, चलो बैठो मैं तुम्हें एक लेक्चर दूंगी, चलो इधर बैठो मैं तुम्हें, इस तरह से तो नहीं कर सकते। कहते कि वाज भी, इसीलिए ये बहुत एहतियात करनी चाहिए कि हर वक्त या हर रोज नहीं, हर रोज आप एक वाज कर रहे हैं, हर रोज आप एक वाज कर रहे हैं, क्या होगा, लोग बेअसरे हो जाएंगे, असर नहीं लेंगे, फिर उकता जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को लोग कहते थे आप रोज हमें वाज किया करें, फरमाया नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना किया, क्या हफ्ते के बाज दिनों में करते थे, लोगों के ऊपर फिर बोझ लगने लगेगा, सुनेंगे ही नहीं वो। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते थे हजरत अनस से कि लोगों पे आसानी करना, मुश्किल ना करना, उनको खुशखबरी सुनाना, सॉरी हजरत अनस को नहीं ये फरमाया था, हजरत मास को फरमाया था, हजरत अनस फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया था हजरत मास से, अल्लाह की रहमत की खुशखबरी सुनाना, मायूस ना करना लोगों को, मुतनफिर ना कर देना, ऐसी सी बातें करना कि जो अंबिया के बराबर की बातें, आप लोग ये नहीं करते, आप वो लोग उस काबिल ही नहीं है, उतने हैं ही नहीं, उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखना कि वो उस तरह के काम करें, आसानी करो लोगों के लिए, मुश्किलात ना पैदा करो, फिर इस तरह से आसान आसान बातें लोगों को बताएं, जब वो उसके आदी हो जाएं फिर उससे ऊपर की बताएं, फिर उससे ऊपर की बताएं, ऐसे नहीं कि मुश्किल तरीन बातें पहले दिन ही लेके शुरू कर दें, लोग कहेंगे नहीं ये हमसे तो होता ही नहीं। फिर इस तरह मौइज़तुल हसना में ये भी आता है कि दिल को नरम करें पहले, आप दिल को नरम करते नहीं है, वक्त बे वक्त नसीहतें करते रहते हैं हम, अपनी भी मैं बात कर रही हूँ, आपको नहीं कह रही कि आप करते होंगे ऐसे, आप यकीनन अच्छा ही करते होंगे, लेकिन हम देखें वक्त बे वक्त, क्योंकि बाज दफा बच्चों के साथ है, हम खुद इतने आजिज आ जाते हैं कि ये क्यों नहीं सुन रहे, तो अब हम जूं उनका मुंह देखते हैं ये किया, फौरन हमें याद आता नमाज पढ़ी है तुमने, कुरान पढ़ा था तुमने, ये किया था तुमने, वो किया था तुमने, फौरन हमें ये शुरू कर दे, उसकी वजह से फिर वो हमसे दूर भागते हैं। फिर दूसरे की मजबूरियों का भी एहसास करना चाहिए कि किसके कौन सी मजबूरी है किसी की, उसके ऊपर उसको ताने ना दें कि हाँ तुमने करना तो है नहीं, तुम तो वैसे ही सुस्त हो, अब वो दूसरा अपनी कोई मजबूरी किसी बात पे बता रहा है, फराइज में नहीं बात, फराइज में कोई मजबूरी नहीं कि मैं उस हो गए नोटिस देके मैं मजबूर थी, ये नहीं, लेकिन और कामों में किसी में मजबूरी हो सकती है, किसी की कोई लेट आया है, कोई किसी तरह कोई और मजबूरी हो गई, अब उसके ऊपर उसको ताने ना दें, उसके हालात को मालूम करें इसकी मजबूरी क्या है। इसी तरह ऐसी कोई बात ना करें जिसमें उनको जलील करें, बस मुबल्लिग ना ऐसा हर वक्त काम पकड़ लेते हैं कि वो लोगों को जलील करते रहते हैं, ऐसे फलाने ने ऐसे कर दिया, फलाने ऐसे कर दिया, मुझे किसी ने बताया कि फलां जो है ना वो बच्चों को बहुत, बच्चों के ऊपर ना बहुत ज्यादा जो करते हैं कि बच्चे ऐसे होते हैं, वो ऐसे बदतमीज हैं, उनको ये नहीं सिखाया भाई, ये नहीं, कि बच्चे भी किसी बच्चे ने सुन लिया तो उन्होंने कहा हमने नहीं इनका सुलह करना, क्योंकि ये तो हर वक्त बच्चों की बुराइयां करती रहती, इसी तरह हर वक्त ये यूथ की बुराइयां, हर वक्त यूथ की बुराइयां, अब जब उनको ऐसे करते रहेंगे यूथ कहाँ आपकी बात सुनेंगे, ये तो ऐसे होते हैं, ये तो आजकल के ऐसे बच्चे हैं, ये तो आजकल के ऐसे बच्चे, उनको कभी सुनेंगे ही नहीं, कई आ जाते हैं वो हर वक्त उनका काम यही है, ये आज की बहुएं ऐसी हैं, आज की बहुएं वैसी हैं, आज की बहुएं ये करती हैं वो करती हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, इनको ये नहीं करना चाहिए, ये माँ नहीं समझती अपनी सास को, ये ऐसे नहीं, अब वो जो बहुएं, जो यंग वो क्राउड है आपका, वो तो वैसे ही कहेगा कि छोड़ो इनको, ये हिकमत नहीं होती, तो अपने उसके अंदर हर वक्त किसी को जलील करते रहना, किसी को बुरा भला कहते रहना, हर वक्त अपनी हम कोताहियां देखते नहीं, वो दूसरों को बुरा भला कहते रहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हमारा इतना ये कॉमन है, ये बच्चों को देख लो फोन लिए बैठे थे बच्चों को देख, लेकिन हम देखे ना अगर वाकई में हम सबसे पहले तो खुद ही कर रहे हैं, बच्चों ने तो हमें ही देखा है ना, हम खुद ये करते हैं, हालांकि हमें तो फोन इस उम्र में आके मिले, उनको तो जब से पैदा हुए उन्होंने फोन देखे, वो तो फोनों में ही पले हैं बड़े हैं, लेकिन हर वक्त हम ये करते रहेंगे, वो क्या हमारे पास आएंगे क्या सुनेंगे। अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई आके गलत भी कोई करता था ना, तो ये पिन पॉइंट नहीं करते थे, फलां बंदे ने ऐसा किया, फलां तूने ऐसा किया, हमारे तो लोगों के सामने ही दूसरों को पिन पॉइंट कर देते हैं, तुम ऐसे करती हो, आपने ये किया, फलां बंदी ऐसे करती है, फलां को तो मैंने वहां पे देखा था, वो तो इस हुलिये के अंदर थी, वो तो ऐसे थी। नहीं, आपसे सरम ने कभी नहीं ऐसे किया था। अगर कोई ऐसी बात करनी होती थी ना, तो फरमाते थे लोगों को क्या हो गया, वो ये काम करते हैं, लोगों को क्या हो गया वो ये काम करते हैं, ये नहीं कि फलां ये उसने काम किया है। अब इसमें जिसने किया होता था वो सुन लेता था, उसको तो पता चल जाता था। इस तरह आप में से जो ग्रुप इंचार्जेस, आपने ग्रुप्स में इस तरह से करके किसी को शर्मिंदा ना करेंगे, उसको मुखातिब करके उसको कह रही हैं तुम ऐसी तुम ऐसी तुम ऐसी, आप तो कभी वक्त पे नहीं आती हैं, आप तो कभी ऐसे नहीं। बल्कि ये कहे हमें वक्त पे आना चाहिए, हमें वक्त पे अपना काम करना चाहिए। तो अगर आप उसको शर्मिंदा करेंगे ना, तो वो ढीठ हो जाएगा और वो भाग जाएगा, नहीं आना चाहेगा आपकी तरफ। बस लोग कुरान का ताना देते हैं लोगों को, उससे क्या वो कुरान की तरफ बुला रहे हैं, तुम तो बड़ा कुरान पढ़ती हो, तुम तो ऐसे करती हो, तुम कुरान पढ़ के ये करती हो। अब वो कहता ही है कि अच्छा मैं तो कुरान ही छोड़ देती, छोड़े ऐसे कुरान को, मैंने क्या पढ़ना, इस चीज की वजह से मुझे ताने मिल रहा। अब वो नया नया बेचारा कुरान की तरफ आया, कोई कुरान पढ़ के उसने परफेक्ट तो नहीं हो जाना था, फरिश्ता तो नहीं बन जाना था, क्यों उसे एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे ऐसे ताने कभी ना दे। तो दावत का जो काम होता है ना, अल्लाह की तरफ बुलाना होता है, दूसरों के ऐब चुनना नहीं होता। यहाँ हर वक्त अगर अगर बैठ के यही हमारी गुफ्तगू हो रही है, देखिए आजकल ये हो रहा है, वो फलान ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, हर वक्त हम बुराइयां बुराइयां बुराइयां, सोशल मीडिया पे ये हो रहा है, फलानी जगह पे ये हो रहा है, फलानी जगह पे ये हो रहा है, इतने ऐब हमें नजर आ रहे हैं हर तरफ। इसका मतलब है कि हमने तो सोच लिया कि हम तो परफेक्ट है, बाकी सारों में बुराइयां। अगर हम अपने ऐप देखने लगे ना, यकीन करें हमें तो इतना टाइम ही नहीं मिलेगा दूसरों के ऐप चुनने का। और अगर हाँ, उस वक्त आप कह सकते हैं जब आपने इसलाह का कोई काम करना है, तो आप कह रहे हैं अच्छा ये ऐप है ना, इसको हम कैसे एड्रेस करें, इसकी हम कैसे इसलाह करें, फिर तो ठीक है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बताया कि ये फलां काम लोग करते हैं, तो ऐप ही है ना एक लोग फलां बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन उसको एक पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन नहीं बना लिया कि हर वक्त जिधर बैठे जी ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, तो फिर अब उसका नतीजा क्या निकलेगा, गंदगी फैलेगी, हम गंदगी को फैलाने वाले बन जाते हैं, समेटने वाले नहीं बन रहे, आम करने वाले बन रहे हैं। जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चल जाए कि आजकल ये हो रहा है।